सबसे पहले तो संजीव जी का शुक्रिया, मुझे मौका दिया यहाँ पे आके उनका काम देखने का। बहुत दिनों से इच्छा थी इंदौर आने की, तो अभी मुमकिन हुआ। क्या आवाज़ जा रही है? क्योंकि माइक नहीं है तो एक बार पीछे आवाज़ जा रही है। ठीक,
पीछे अगर नहीं जा रही तो आगे
थोड़ा आगे आ जाए, आ जाए सब थोड़ा आगे, सीट को कवर कर लें।
तो कुछ इस मौके पे मैंने चार पांच बिंदु लिखे हैं जो बात करने के लिए लोक विद्या पर। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड अर्थशास्त्र में है तो सोचा कुछ उस एंगल से भी कुछ बातें अगर आ सकें लोक विद्या दृष्टिकोण से, तो इसमें कुछ मैं कहूँगा। तो लोक विद्या के मुद्दे पे आने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा एक नज़र डालें भारत की आज की स्थिति मोटे तौर पर, और थोड़ा एक विश्व के संदर्भ को भी ले लें, दुनिया में और जगह पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी मायने रखता है हम लोग के लिए। तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो अब हमको जो बाजारीकरण उदारीकरण का नया मॉडल हम लोग अपनाए हैं यहाँ पे, उसको 25 साल अब हो गए हैं, और एक जायज़ा लिया जा सकता है कि इससे क्या परिणाम हुए हैं, किन को फ़ायदा हुआ है, किन को नुकसान हुआ है। और ये बात सामने आती है कि कुछ लोगों को ज़रूर नए अवसर मिले हैं, कुछ नई चीज़ें ज़रूर हुई देश में, लेकिन अगर हम लोग देश के अधिकांश जनता की बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं किसानों कारीगरों के बारे में, छोटे दुकानदारों छोटे धंधे वालों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, तो ये कुल मिला के देश के 90% लोग हो जाते हैं। इनको इस मॉडल से कोई ख़ास फ़ायदा हुआ ऐसा नहीं दिखाई देता, यानी इनकी तुलना में और जो ऊपर के 5-10% हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये भी आप कह सकते हैं जैसे भी नज़र से देखें। तो जो अधिकांश जनता है उनके पल्ले में विस्थापन और गिरती हुई आय, महंगाई वगैरह के अलावा बहुत कुछ नहीं पड़ा इस मॉडल के चलते। और ये जो आर्थिक मॉडल है, ये जो नीतियाँ हैं जो बाज़ार को वर्चस्व देती हैं, बाज़ार को हर चीज़ में सामने रखती हैं, या विदेशी पूंजी के बारे में बार बार बात करती रहती हैं, स्टॉक मार्केट के बारे, ये सब जो आप जानते हैं जो अखबार पढ़ते हैं देखते ही होंगे, ये जो नीतियाँ हैं वो सिर्फ भारत में नहीं तो कई जगह पे लागू हुई, और अभी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बाकी जगहों पे उनका क्या असर हुआ है। तो ये भी वो देखें तो यही सामने आता है कि ये पॉलिसियाँ सब जगह फेल हो रही हैं, ना केवल भारत में, ना केवल विकासशील देश जिनको कहते हैं जो दुनिया के गरीब देश हैं, ना केवल वहाँ, बल्कि जो अमीर देश हैं यूरोप के, अमेरिका वगैरह इस टाइप के जो देश हैं, वहाँ पे भी इन पॉलिसियों के वजह से, नीतियों की वजह से लोगों पर परेशानी ही आई है, ये दिखाई देता है। तो यूरोप में जो संकट, आर्थिक संकट जिसको कहते हैं, जो शुरू हुआ 2008 के, वो अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ देशों में बेरोज़गारी 25% 30% ऐसे पहुंच गई, यानी कि एक चौथाई देश के पास करने के लिए कोई काम नहीं, रोज़गार नहीं है। और अगर जवान लोगों में देखें 25 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, तो कुछ कुछ देश है यूरोप के जहाँ पे बेरोज़गारी 50% से ज़्यादा थी। ये बहुत बड़ा संकट, मतलब ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, सामाजिक संकट, और उन देशों में बहुत इसकी वजह से प्रॉब्लम्स, राजनीतिक प्रॉब्लम भी, सरकारें गिरती हैं फिर नहीं बनती है फिर गिरती है, ये सब चल रहा है पिछले कुछ सालों से इन्हीं नीतियों के तहत। इन्हीं नीतियों ने वो संकट भी लाया है और उस संकट को लंबा भी खींच रही हैं यही नीतियाँ। तो इस सब के चलते ये पूछना तो जायज़ है कि विकल्प तो होना चाहिए कुछ, और ना विकल्प की बात तो दूर हो जाए, एक कॉमन सेंस जो है वो देश में है कि इसका कोई विकल्प है ही नहीं। ये जो नीतियाँ हैं जो अभी चल रही हैं, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, राज्य की हो, केंद्र की हो, सब यही में इसी में लगी हुई हैं कि और पूंजी निवेश कहाँ से आएगा, और बाज़ार को कैसे फैलाव मिलेगा, और उदारीकरण करो, ये कानून हटाओ, वो हटाओ, भूमि अधिग्रहण को आसान बनाओ, इसी में चल, जो कुछ वो नहीं कर पाए हैं वो इसलिए कि लोगों का विरोध हुआ है, इसलिए नहीं कि उनकी मंशा बदल गई है। जो कुछ मॉडल में धीमी गति हुई वो लोगों के संघर्ष की वजह से भारत में हुई है, हमको दिखता है और दुनिया में भी सभी के यही हाल है कि जहाँ जहाँ लोगों ने कहा है कि हम ये और नहीं बर्दाश्त करेंगे, आप हमको ये बताना बंद कर दीजिए कि आर्थिक विकास दर 8% होगा 9% होगा तो फैलाना होगा टिकाना होगा, हमको इसमें अब विश्वास नहीं है। जो होना है वो अभी होना चाहिए, 10-20 साल 30 साल रुकने का हमको कोई हमारा कोई इरादा नहीं है। इसी बात से जो है वो कुछ होना है, नहीं तो मंशा साफ है कि ये नीतियाँ चलनी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर विकल्प की हम लोग बात करें तो वो कहाँ से आएगा, और इसके लिए भी ये विकल्प का माहौल बनाने के लिए और कुछ और दर्शन कुछ और विचार सामने लाने के लिए भी कुछ कुछ कॉमन सेंस बातें हैं, और कॉमन सेंस बातें हैं उनको भी हमको चुनौती देते आना चाहिए। कॉमन सेंस ये है, सब लोग ये मानते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सार्वजनिक दुनिया में दखल दे सकते हैं, आप ये बात कर सकते हैं कि समाज को ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, हमको वो वैसी नीति अपनानी चाहिए, फलाना ढिकाना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको ये हक नहीं है, आपको ये अधिकार ही प्राप्त नहीं है कि आप सार्वजनिक मंच से बोलें और आपका एक बात सुने। ये बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये बदलने का एक लोकविद्या विचार का एक मतलब और भी कई इसमें बातें आती हैं, दिलीप जी भी बात करेंगे, लेकिन एक जो हम लोग लोकविद्या का दावा ठोक जो गाते हैं तो उसके पीछे सोच ये है कि जब तक देश के अधिकांश जनता जो लोग विद्याधर समाज है, जो किसान कारीगर तमाम छोटे धंधे करने वाले लोग, जो लोग कि कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं दिखा सकते कि हमारे पास ये ज्ञान है, जब तक वो लोग की उन लोगों की भागीदारी वहाँ नहीं होती सार्वजनिक स्तर पर कि ये देश की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, इस प्रदेश की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, गांव की नीति क्या होनी चाहिए, शहर में क्या होना चाहिए, इस सब में जब तक उनकी दखल नहीं आती, प्रखर रूप से नहीं आती, तब तक यही सब होना है। क्योंकि जब तक देश के पास 5-10% लोगों के पास ये अधिकार दिया हुआ है कि वही सारी दिशाएं तय करेंगे, सारी रचनाएं वही तय करेंगे, तब तक उन्हीं के हक में चीज़ें होनी है। ये तो सीधी बात है, सब लोग इसको समझते हैं। तो ये कॉमन सेंस चुनौती देने की बहुत ज़रूरत है, और इसमें हम अकेले नहीं हैं, दुनिया के कई जगहों पे ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अगर हम जाएं जैसे देखें लैटिनी अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में कई देश है जहाँ पे आदिवासियों की संख्या बहुत है। कुछ कुछ देशों के नाम आपने शायद सुने भी हों, बोलीविया एक देश है, इक्वाडोर एक देश है, ये सब जो देश हैं इनमें कई साल तक मतलब यूएसए की अमेरिका की दादागिरी चलती थी, और इन लोगों ने उसको चुनौती देना शुरू किया है, और उसमें जो है यहाँ के आदिवासी इन देशों के सामने आए हैं, और उन्होंने ये बात सामने रखी है कि आपने जो दशकों से बल्कि सैकड़ों सालों से मॉडल चला के रखा है उसमें हमारा नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये जो सारी विकास वगैरह की आप बात करते हैं इसमें हमारा कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि हमारे संसाधन छीने गए हैं और हमारी जीविका ख़त्म हो गई है। ना सिर्फ ये, आपके मॉडल में पर्यावरण का इस कदर विनाश हो गया है कि हम ही सिर्फ नहीं मरेंगे, अंत में आपको भी वही मरना। तो ये मॉडल तो एक बहुत भद्दा मजाक है हम लोगों पर, और हम लोग एक पर्याय लेकर आए, एक विकल्प लेकर आए हैं, और अगर आप हम लोग की बात सुनेंगे तो हम ऐसा चित्र आपके सामने रख सकते हैं, ऐसी एक रचना रख सकते हैं समाज की जिसमें न पर्यावरण को ख़त्म होने की ज़रूरत है और न आदमी को, और न ये गैर बराबरी रहेगी। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे जो सोचने का जो नज़रिया है, ये लोग कह रहे हैं और इसी भाषा में कह रहे हैं कि हमारे सोचने का देखने का नज़रिया ये आपको मानना होगा कि आपसे बेहतर भी है, न केवल आपके बराबर, जो जिसको आपने तुच्छ मान के रखा है, जिसको आपने अवैज्ञानिक और अंधविश्वास और पता नहीं क्या क्या जो नाम दे सकते, जो गालियाँ दे सकते थे वो सब दिए हैं इस ज्ञान को। यही ज्ञान है जिसमें वो सारे मूल्य हैं, बराबरी के, भाईचारे के, और पर्यावरण और प्रकृति के साथ मिलकर रहने के, ये सब मूल्य हैं, ये इसी ज्ञान में है, ना कि साइंस में जहाँ पे जो हमको मिला है वो स्मार्टफोन मिला है और ये सब चीज़ें मिली हैं जो हम बहुत मज़े से जो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो अगर हम लोग देखें तो उसकी जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बैलेंस शीट कहते हैं, एक तरफ अच्छे पहलू दूसरी तरफ बुरे पहलू, दोनों को मिला के देखें तो चित्र बहुत अलग है। यही है कि हमको बुरे पहलू कभी बताए ही नहीं जाते हैं। कंप्यूटर है, इंटरनेट है, फ़ोन मोबाइल है, ये सब नई चीज़ें तो दिख रही हैं सबको और इसके फ़ायदे भी सबको दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो छिपी हकीकत है, जो खनन करने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ जंग लड़ाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो खनन और वो माइंस हमारे कंट्रोल में रहें, वो एक तरफ का दृश्य है। दूसरी तरफ ये जो सारा कचरा, ई कचरा जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर फेंके जाएंगे, मोबाइल फेंके जाएंगे, इसको किसी को साफ़ करना है, इनमें तमाम तरीके के विषारी केमिकल्स होते हैं, उसका क्या होगा, वो ज़मीन में जाएंगे, वो पानी में जाएंगे, ये तमाम जो चीज़ें जो हम कभी सोच रहे हैं उसको उपभोग करके छोड़ दें, ये एक संस्कृति जो बना के रखी, माहौल बना के रखा है, ये सब जगह फैला हुआ। अब इसका विकल्प क्या है? वो उसी ज्ञान में वो विकल्प नहीं आया, जिस ज्ञान से ये समस्याएं पैदा हुई हैं वही ज्ञान से विकल्प नहीं आना है, ये एक लोक विद्या की समझ है और लैटिन अमेरिका की जो मैं बात कर रहा था उन लोगों की भी यही समझ है। तो हम लोगों को उससे प्रेरित भी हो सकते हैं, वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं अपनी खुद की भी जो ये बात कह सकती हैं कि विकल्प हम लोग से आना है, लेकिन इसके लिए एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए लोक विद्या के जो स्वामी हैं उनको सामने आने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों की भी इसमें भूमिका है, लेकिन वो ज़्यादा सुनने वाले की भूमिका है। सुनना और लोगों को समझाना कि इसका क्या दृष्टिकोण है, ये उनकी भूमिका है, ना कि लोक विद्याधर समाज को समझाना कि आप क्यों ये गलत सोच रहे हैं, क्यों आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता है। ज़्यादातर लोग यही करते हुए दिखाई देंगे, जैसे हम लोग एक लोक विद्या का एक दावा है कि सबकी आय पक्की हो, ये दावा बहुत दिलचस्प है। जब भी आप पढ़े लिखे लोगों के सामने ये बात उठाएंगे तो हजार विरोध में आ जाएंगे, पर ये कैसे हो सकता है, तो ये बात, ये गड़बड़ है, ये तो बाजार का सिद्धांत है, बाजार के सिद्धांत को आप क्या कर सकते हैं, बाजार का सिद्धांत तो भगवान ने दिया हुआ है, आदमी का तो है नहीं, वो तो प्रकृति जैसा है, उसको आप कबूल करें या मर जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। बाजार आदमी का बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ है, बाजार के नियम भी इंसान के बनाए हुए हैं। जब कोई ये कहता है कि ये तो बाजार का नियम है, उसका कहने का ये मतलब है कि बाजार की रचनाएं ऐसी हैं कि ये नतीजा निकलना चाहिए, वो नतीजे को दिमाग में रख के रचनाएं बनाई गई हैं, और अगर हम नतीजे अलग, मूल्य अलग हों तो वो रचनाएं भी बदल जाएंगी, बाजार की बनावट बदल जाएगी। जैसे हम लोग लोक विद्या बाजार की बात करते हैं, लोक विद्या बाजार यानी वो बाजार जो लोक विद्या समाज के मूल्यों पर बना है। वो क्या मूल्य है? जैसे हर ज्ञान, हर व्यक्ति ज्ञानी है और हर ज्ञान को बराबर का दर्जा मिले, इसका बाजार में जाए तो क्या रूप आएगा कि आय सबकी वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है तो उसी के बिना पर आपको 5-6 गुना मिल रही है तनख्वाह, और अगर डिग्री नहीं है तो आप फिर बाजार के इसमें हो गए। बाजार उनको लागू नहीं, बाजार सिर्फ उन लोगों को लागू है जिनके पास डिग्री नहीं। तो ये ऐसे सब चीज़ों को लोक विद्या विचार से हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, इस बात को हम सामने ला सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा बाजार नहीं है जिसका नियंत्रण सरकारें ना कर रही हों। ये विचार छोड़ दें, जब कोई आपसे बात करे कि भाई बाजार तो मुक्त बाजार है, इसमें तो आप कुछ, ये बिल्कुल गलत। हर बाजार दुनिया का सरकारों ने चलाया हुआ है और उसके नियम सरकारों ने तय किए हैं। तो जब लोक विद्या सरकार बने या लोक विद्या स्वराज की जब हम लोग बात करते हैं कि कोई ऐसी नई दुनिया जो लोक विद्या के सिद्धांतों पर बनी है, तो उसमें का जो बाजार की तो जगह हो सकती है, उसमें बाजार निकालने की बात जरूरी नहीं है, बाजार हो लेकिन बाजार का नियंत्रण स्थानीय समाज करे, स्थानीय समाज ये तय करे कि किसको क्या मूल्य मिलेगा। जब चीज़ों का आदान प्रदान, खरीद बेच होती है, तो वो किस अनुपात में उसका एक्सचेंज जिसको कहते हैं वो होगा, ये सब तय करने वाली बातें हैं। ये सब समाज की तरफ से बाजार का नियंत्रण हो रहा है, जो कि हमेशा होता है। बस ये सवाल है कि वो मूल्य कौन से हैं जिससे नियंत्रण हो रहा है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वो मूल्य बदलने हैं। वो ये मूल्य नहीं हो सकते कि जिनके पास पहले से ही ज़्यादा है उनके पास और ज़्यादा हो जाए, ये बाजार का मूल्य है। तो आप अगर बाज़ार में कम चीज़ें लेके गए तो और कम चीज़ें वापस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा लेके गए तो और ज़्यादा लेके वापस आएंगे। ये मूल्य ख़त्म कर दूसरा स्थापित करना, तो ये सब हमारे लोकप्रिय राजनीति का काम है एक तरीके से। लोक विद्या स्वराज के बारे में एक दो और बिंदु में कह दूं, हमारी जो अभी रचना है राजनीतिक वो बहुत केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड जिसको कहते हैं, सारा वित्त जो है जो एक तरफ जाता है पैसे फिर वापस आता है, ये सब बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, सत्ता बहुत केंद्रीकृत है एक जगह पे। ये सारी जो ये सिस्टम जो है वो लोक विद्या विचार के साथ ठीक नहीं बैठता। जो जब हम स्वराज की बात करते हैं तो उसके पीछे एक मूल्य ये है कि सत्ता विकेंद्रीकृत हो, डिसेंट्रलाइज हो, यानी स्थानीय समाज के लोग, गांव के लोग, शहर के मोहल्लों के लोग वो अपने बारे में ये चीज़ें तय कर सकें, उनको किस चीज़ों की ज़रूरत है, बाज़ार किस प्रकार का होना चाहिए, सड़क कैसी होनी चाहिए, पानी का इंतज़ाम क्या हो, बिजली कैसे मिले, ये सब उनके हाथ में ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर कोई निर्णय ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर लेने जाने हैं तो यहाँ से ही वो ऊपर जाएंगे, यानी जो छोटी छोटी इकाई के लोग हैं वो मिलकर, पंचायतें जैसे हैं तो बहुत सारी पंचायतें मिलकर या ग्राम सभाएं मिलकर वो निर्णय लें जो बड़े एरिया पे लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को आपने बिठा दिया कलेक्टर साहब जो पूरे ज़िले का, फिर उन्हीं के पास वही करता धरता है, वही सब कुछ है, इससे लोकहित में निर्णय होना मुमकिन नहीं। तो लोकहित में अगर निर्णय लेने हो, लोकोद्या स्वराज की हम लोग बात कर रहे हो, तो ऐसा कोई एक सिस्टम बन सकता है। और ये कोई एक आदमी का काम नहीं है कि जो बैठ के सारा बना दे कि भाई ये चित्र है आप जाकर लागू कर दीजिए, ये बात नहीं हो रही है। जो कुछ भी है वो लोगों के साथ ही उत्पन्न होगा। ज्ञान पंचायत जब हम बात करते हैं तो इसी टाइप की उसमें बात हो सकती है कि अगर हम लोग साथ मिलके ये सब समस्याओं का हल करने वाले हैं तो किस टाइप का हल निकलेगा। और इस दावे के साथ आए कि हम लोग जानते हैं क्या करना है, हम किसी के ज्ञान के मोहताज नहीं हैं इन समस्याओं को का समाधान करने के लिए। हम जानते हैं कि हमारी समस्याएं क्या है, हम जानते हैं उनके उपाय क्या है, और सिर्फ हमारी समस्याएं नहीं, जैसे मैं वो लैटिन अमेरिका का संदर्भ दे रहा था, हमारी सोच बड़ी है, लोक विद्या की सोच में लोगों का हित है, सिर्फ किसानों का हित या कारीगरों का हित ऐसे नहीं, पूरे समाज का जो हित इसमें इस विचार में नहीं था। एक बात कहना बहुत ज़रूरी है गैर बराबरी के, वो है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जो संसाधन है उनका बंटवारा बहुत उसमें बहुत गैर बराबरी है। कोई भी संसाधन आप ले लीजिए, वित्त तो यानी फाइनेंस जिसको कहते हैं वो तो सबसे बड़ा है, वो तो सब गैर बराबरी का बाप, वित्त की गैर बराबरी या संपत्ति की गैर बराबरी। अभी अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो कुछ 10% लोग हैं सबसे अमीर जो जिनके पास लगभग 50-60% देश की संपत्ति उनके पास है, और अगर हम दुनिया के स्तर में जाएं तो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया में और बहुत ज़्यादा अमीर, भारतीय अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर लोग बाहर दुनिया में बैठे हैं। तो अगर दुनिया के स्तर पर देखें तो गैर बराबरी और भी ज़्यादा है। तो इतनी गैर बराबरी जब संपत्ति की और वित्त की है तो इसके चलते हुए कितने भी हम लोक विद्या की बात करें हम वो दुनिया नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पैसे में जो ताकत है वो तो सभी लोग जानते ही हैं कि है। तो वित्त की गैर बराबरी या संपत्ति की गैर बराबरी के बात के बगैर नहीं चलेगा। लेकिन और बहुत सारे संसाधन हैं जो राष्ट्रीय संसाधन हैं, यानी बिजली को ले लें, स्वास्थ्य को ले लें, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम सब की हैं, सार्वजनिक है जिनको कहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें गैर बराबरी पाई जाती है। कहीं कहीं 24 घंटे बिजली, कहीं बिल्कुल ही नहीं, ये स्थिति अभी भी देश में है। और अब इसको 60-70 साल हो गए आज़ादी को, तो अगर आप 60-70 साल में सबको बिजली भी नहीं दे पाए तो क्या सबका साथ सबका विकास होने वाले 5 साल में, या किसी भी सरकार की, सिर्फ ये सरकार की बात नहीं है, नहीं हो सकता है। अगर इतने साल में आप सबको बिजली भी पूरी तरह नहीं दे पाए, सबको पीने का पानी, ये सब जो बिल्कुल आम चीज़ें हैं जो जिसके बिना पर आदमी जिंदा, वो भी नहीं हो पाया तो कैसे फिर। तो ये सब गैर बराबरी की भी बातें लानी होंगी और हमको करना होगा। अब एक इंदौर का मैं एक एग्जांपल ले लूँ, चूँकि हम इंदौर में बैठे हुए हैं। ये जो सारी मिल की ज़मीनें हैं, इसका भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बहुत सारी ज़मीनें इंदौर में खाली पड़ी हुई हैं जो टेक्सटाइल मिले हुए करते थे यहाँ पे, जो बंद हो गए। और ये तमाम दुनिया में हम लोग ने देखा है कि ये तो पूंजी का ये कायदा ही है कि कहीं जाते हैं, कुछ होता है, रोज़गार बनता है, फिर कहीं और मौका मिल जाता है तो वहीं चले जाते हैं। उनकी कोई एक प्रदेश से या रीजन से कोई ये तो नहीं है दोस्ती कि यहाँ आए तो यहीं पे रहेंगे, यहीं के लोगों को रोज़गार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नया अवसर मिल गया, दूसरी जगह चले गए। बहुत जगह हुआ है, अमेरिका में बड़े पूरे शहर के शहर ऐसे हैं जहाँ से उद्योग भाग गया। अब आप जाएंगे वहाँ पे तो सड़क दर सड़क दिखेगी आपको, मकान खाली पड़े हुए, सब लोग छोड़ के चले गए, मतलब वो गाँव वीरान हो गए। और जहाँ अच्छी अच्छी नौकरियाँ लोगों की थी, वो अब कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ दुकान में काम कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, जैसे कैसे अपनी जीविका चला रहे हैं। तो ये सिर्फ भारत का तजुर्बा नहीं, सब जगह यही होता है। इंदौर में भी ये हुआ कि ये जो मिले थी बहुत, एक जगह ज़माने पे हजारों लाखों लोग यहाँ पे उसकी उसके बिना पर जीते थे, चली गई। अब वो ज़मीनें सब खाली पड़ी हैं और मजदूर केवल इसके लिए लड़ रहा है कि जो बंद हो गई तो हमको जो जो हमारा था हक वो तो दे दो भाई, उसके लिए अब 20-30 साल हो गए लोग मर रहे हैं।
सही।
तो ये हालत है। अब इन ज़मीनों का क्या, बहुत सारी ज़मीन है, इस पे लोगों के रहने के लिए जगह हो सकती है, उद्योगों के लिए जगह हो सकती है, बड़ी बड़ी हाट लग सकती है कि और लोग जगह से लोग आए और अपनी बिक्री करें, लोकविद्या बाज़ार बाकायदा यहाँ पे बन सकता है और ये जगह फिर से जीवित हो सकती है। अभी जो वीरान पड़ी है सारी, कुछ नहीं है, सब जस्ट किनारे में लोग जी रहे हैं, बीच में सब खाली पड़ा है, वो फिर से उसमें कुछ ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन ये सब करने के लिए कुछ एक राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी कि ये जो अगल बगल में लोग हैं वो सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए ज़िंदा नहीं है, वो कुछ सोच भी रखते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। उनको लाना होगा साथ में, उनको उनके साथ में लड़ना होगा सरकार के साथ, क्योंकि ज़मीन का तो क्या है, माल बना दिया, कुछ और बना दिया, यही होना है। अगर लोगों की तरफ से लड़ाई नहीं हुई तो सब जगह हम लोग ने यही देखा है। बम्बई में, मैं बम्बई से हूँ, बम्बई में सब यही हुआ, मिले हुई थी, हुआ करती थी बड़ी बड़ी, ऐसी बंद हो गई, वो ज़मीन बिक गई, अब मॉल बन गए वहाँ पे। तो मॉल अब जितने लोगों को रोज़गार मिला उतना मिला, बाकी तो मॉल की इकोनॉमी ये नहीं है कि जो लोगों के साथ रिश्ता बना के रखे, ना ही अब हम लोग वहाँ जाएंगे, ना ही कुछ वहाँ से ख़रीदारी होनी है, ना वहाँ पे बेचने के लिए जगह मिलनी है, ना कुछ। तो आपने पूरा ये जो एक सार्वजनिक संपत्ति थी इसको प्राइवेटाइज कर दिया, निजी बना दी और लोगों को रखा, यही मॉडल सब जगह। जो सब लोगों की मिल्कियत है उसको लो, प्राइवेटाइज करो, ख़त्म कर दो सबसे, जिसके साथ यही, माइनिंग के साथ यही, स्पेक्ट्रम आप ले लें, इतना बड़ा घोटाला। स्पेक्ट्रम यानी ये चीज़ थी जो हवा में है, इसका मोबाइल आने के पहले इसका कुछ नहीं था, मोबाइल आने के बाद इसका दाम एकदम से हो गया, अब ये हवा करोड़ों के रुपए की हो गई, लेकिन हवा तो सबकी है, फ़ायदा किसका होगा। जल जंगल ज़मीन ये सारे जो हम लोग देखते आ रहे हैं संघर्ष, लोकविद्या दृष्टिकोण से हम लोग जब बात करते हैं, संघर्षरत जो लोग हैं, बड़े संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग ये भी कहते हैं उनसे कि आप एक मुद्दा और जोड़ दीजिए इसमें, आप ये मत कहिए कि हम लोग को और कुछ नहीं आता, हमको ये रहने दीजिए, हमारे से ज़मीन मत छीनिए, हमारे से दुकान मत छीनिए, क्योंकि और कुछ हम नहीं कर सकते, ये मत कहिए। क्योंकि जो लोग छीनने आ रहे हैं वो तो आपसे भी कम चीज़ें कर सकते हैं, वो तो छीनने आ रहे हैं, तो आप तो कम से कम कुछ बना रहे हैं, तो छीनने की कला एक तरफ और बनाने की कला एक तरफ, आप समझ लीजिए। तो ये मत कहिए, उल्टा कहिए कि समाज चलाने का ज्ञान हमारे पास है, अनाज उगाने का ज्ञान हमारे पास है, जंगल की रक्षा और जंगल को पनपने का जो तरीका है, जो जंगल के तमाम जो विद्या है वो हमारे पास है, धंधे चलाने की विद्या हमारे पास है, घर चलाने की विद्या हमारे पास है, ये सब हमको रखना है, और इसके बिना पर हमको वही आय चाहिए जो कॉलेज वाले लोग पा रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान किसी से कम नहीं है। और जब तक ज्ञान का मुद्दा ना आए तब तक ये संघर्ष, लोग कहते रहेंगे कि आप तो विकास के खिलाफ हैं, अच्छा आप तो ये ज़मीन बचा के आप क्या करेंगे, यही सब बातें आती रहेंगी, क्योंकि आप बचाने की बात कर रहे हैं, जीविका बचाने की बात कर, बचाने की बात नहीं करना है, बात करना है नए समाज की। हमको यहाँ इसलिए रहने दो कि हमारे से ही नया समाज बनना है जिसमें सबका भला है। हमसे छीनेंगे और हमको ख़त्म कर देंगे तो आपको भी ख़त्म हो जाएगा, ये कहने की ज़रूरत है लोकोत्तर दृष्टिकोण से। तो मैं अभी इतना ही कहता हूँ, बाद में फिर जैसे सवाल हो और सब तो और बात होंगी।